কলকাত জন্মাষ্টমীটা বিষয় और संबंध ज्ञान ये सब नहीं, वो साधन उसने सभी देवताओं को एक समान मान करके वो एक प्रकार सामान्य, और उसके बाद में श्रद्धा होने के बाद में वैष्णव के संग होने पर ऐकांतिक कृष्ण भक्ति के लिए उत्तमा भक्ति का इंद्रियों के द्वारा साधन करता है। अब यहाँ से भक्ति आरंभ, किंतु अभी अनर्थ है, अनर्थों को छोड़ करके संबंध ज्ञान होने पर जब रुचि आसक्ति आई है और उसे भाव हृदय में प्रकट हो गया तो ये भाव भक्ति अत्यंत कुछ दुर्लभ साधन भक्ति हो जाएगी सबका, किसी भाव भक्ति बड़ी दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है प्रेमा भक्ति। उस प्रेम भक्ति से भी दास्य भाव, दास्य से सप्त से वात्सल्य से दाम्पत्य और दाम्पत्य से भी अधिक उपभोक्त, गोपियों का भाव उससे भी अधिक परज्ञ, उसमें भी अधिक सामान्य विवाह के अंतर्गत मंदिरों का भाव, सखियों का भाव, वीरों के लिए सर्वोत्तम और सदगुरी है। इससे बढ़कर के अब उस प्रसंग को अब यही पर समाप्त करते हैं और हम लोगों का रामानंद संवाद का कोई अंतिम क्या करते हैं
उपसंहार
की जो बातें बतला रहा है अब उसमें से कुछ आलोचना करते हैं, वो भी एक दिन लग जाएगा और इसके बाद में नया तुलसी आरम्भ करके भागवत को या चेतन में चलते हैं। आप लोगों ने ये सुना राय रामानंद जी कह रहे हैं, अच्छा बात लाइए आपको हमने सन्यासी के रूप में देखा और आपको गौ रूप में देखा, आपके अंगों की कांति गौ, फिर देखा क्या आपको श्याम रूप में देखा, बंसी बजा रहे हैं अत्यंत सुंदर बुखार बिंद और उसकी अंदर ललित त्रिभंग आपका है, थोड़ी देर के बाद में देखा उसके सामने एक कांचन पुतलिका अर्थात सोने की पुतली वो खड़ी है और उसकी आभा से आपका ये शाम अंग भी बहुत
सर्व अंग
वो ढका, आप बतलाइए आप कौन हैं। महाप्रभु जी ने कहा मैं तो वही सन्यासी ब्राह्मण बालक हूं किंतु आपकी कृष्ण में अत्यंत अधिक भक्ति है और उस भक्ति के नाते उत्तम महापुरुषों का महाभागवतों का लक्षण होता है कि भाव जंगम देखे ना देखे चाहिए, वो हमें देख रहे हैं तो वो नहीं ये देखेंगे जी ये वकील साहब हैं, ये कृष्णदास ब्रह्मचारी हैं, ये और ब्रह्मचारी हैं या वो लड़की है, ये नहीं देखेंगे, ये गाय है बैल है पेड़ है कि ये नहीं देखेंगे, देखेंगे उसको किंतु उसमें अपने इष्ट देव को करेंगे, उनकी स्तुति उससे होती है और उसके सिद्ध स्वरूप चिन्ह स्वरूप को देखेंगे। तो आप भी ऐसे हमको देख रहे हैं किंतु हमको नहीं देख करके अपने इष्ट देव आने कृष्ण को ही आप देख रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये मेरा गुण नहीं बल्कि ये आपका गुण है, ये भगवत भक्ति का उत्तम भगवत भक्ति का प्रेम का ये परिचय है। राय रामानंद जी ने कहा आप अपनी चोरी छोड़िए, आप सचमुच में ये बताए। तब महाप्रभु जी ने हंस कर और अपना स्वरूप वो स्वरूप क्या दिखलाया, रसराज महाभाव जी एक स्वरूप, रसराज सब रस स्वरूप जो परम ब्रह्म कृष्ण है वो, और महाभाव स्वरूप श्रीमती राधिका, यहाँ पर दोनों एक रूप हो गए। इन्होंने पहले देखा था, पहले क्या देखा, पहले तो गौरव, उसके बाद में क्या देखा, कृष्ण को और राधा जी दो को देखा, और राधा जी की कांति से कृष्ण की कृष्ण कांति नील कांति अच्छा कांति के द्वारा। अब इन्होंने क्या देखा, देखी रामानंद भैया आनंद में घुस, उन्होंने राधा जी को भी देखा है, पहले कृष्ण को भी देखा है, किंतु मूर्छित नहीं। आज क्यों हो गई, कोई भी तेज बात, अब तक तो उन्होंने दोनों को अलग अलग देखा, किंतु अब देखा दोनों एक। देखा क्या, उन्होंने महाप्रभु जी ने देखा जैसे ये समुचित हो गए, बस अपने सुंदर कोमल हाथों से और होने से ही जब उनको वो जग गए। और देखा क्या, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए महाप्रभु जी को, उन्होंने सब देखा क्या, गौरव अंग नहीं हो नहीं महाप्रभु जी का और हस्त करते कारण गौर अंग नहीं मोर राधांग स्पर्शन गोपेंद्र सुख बिना इन्हों नाश करते अंग अच्छी तरह से इस चीज को समझ। गौर अंग नहीं हमारा ये जो अंग देख रहे हो गौर, ये मेरा अंग गौर, हमारा अंग क्या है, वही नील काम समणी जो कृष्ण है प्रजन्मंदन श्याम सुंदर, वही मैं बंसी भी बजा रहा हूं, त्रिभंग ललित से खड़ा हूं, श्याम नील कांति वो हमारे अंग से प्रकाशित होते हैं, किंतु राधा जी ने मुझे स्पर्श कर दिया। कैसे स्पर्श किया, राधा जी एक दिन खड़ी है, कोई एक सखी कह रही है पद्मा, वो है चंद्रावी जी की अपनी अष्ट शक्तियों में से एक, ललिता जी से या विशाखा जी से कह रहे हैं, विशाखे क्या कहें हमारी सखी का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य हो गया तो दुर्भाग्य ये हमारी सखी आज बहुत दिनों से चेष्टा कर रही थी जे कृष्ण के सब अंगों को दर्शन करें, तो आज उसका यह सौभाग्य हुआ कि हमारा राजा सती ने नस से नस तक समस्त अंगों का दर्शन करके एकदम आज कृतार्थ हो गई। कहने का ये तात्पर्य जी, ये गोपियों को जो राधा पक्ति है या राधा जी का ये सौभाग्य नहीं, ये उनकी महिमा चंद्रावनी जी का वर्णन था। तो राधा जी या उनकी सहेली कह रही है ललिता जी या विशाखा जी क्या कहें, राधा जी तो जन्म जन्मांतर तक कृष्ण को देखने की सर्वांग चेष्टा करती हैं, किंतु आज तक देख नहीं पाई। जब मुखारविंद की तरफ मैं देखती हैं तो गोंद जैसे उनकी दृष्टि मुखार बिंद में चिपकती है, और देखते 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 उस दिन का समय वैसे ही था। यदि भक्त स्थल पर उनकी नजर पड़ी तो नजर हटती नहीं, यदि त्रिभंग ललित पैरों पर यदि पड़ी पदनक ज्योति पर पड़ी वो हटती नहीं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है हमारी शक्ति का, सुनकर के पदमान लगती क्यों, वो तो सब जगह देख रही है, उनकी स्थिर दृष्टि नहीं गई। आज इनका एक ही कमों में इतना स्थिर प्रेम है जो उठती जब तक देखी वहीं पर आंख गुंड की तरफ जो चिपकी इधर उधर। राधा जी की उस समय लालसा होती है, कृष्ण का एक स्पर्श किया ना, हाँ उसमें इतना माध्यम जो वो पाती हैं, अनुभव करती हैं, जो समय उनकी लालसा होती है अपने प्रत्यक्ष अंगों से कृष्ण के प्रत्यक्ष अंगों का, ऐसे बड़ी भारी लालसा है। कृष्ण लीला में वो पूरी नहीं हुई, वो लीला कब हुई? पूरी हुई इच्छा अब ये पूरी हो रही है। जब महाप्रभु जी ने कृष्ण जी का कांति को चुराया, अंग कांति को जब चुराया, तब क्या किया? राधा जी ने यही कहा, रहे गौर अंग रहे हो, मेरा अंग गौर नहीं है, किंतु मोर राधा अंग स्पर्शन, राधा जी ने हमारे प्रत्येक अंगों से हमारे प्रसन्न अंगों को स्पर्श माने केवल मात्र उनके अंगों की आभाई नहीं, अंगों का स्पर्श अंगों से हुआ है, इसलिए राधा कृष्ण और दोनों कृष्ण अलग हैं। राधा जी ने अपने प्रत्येक हाथों से हाथ, अपने वस्त्रक्षर से वस्त्रक्षर, सिर से सिर, पैरों से पैर, समस्त अंगों को ही, और कृष्ण की जो नील कांति थी, उज्ज्वल नील मणि इसको कहते हैं कृष्ण को ही, उसकी जो आभा थी निकल गई थी, वो राधा जी के अंग की कांति से क्या हुआ?
सब व्याख्या भी सब
अंग से अंग भी हुए और रहे कृष्ण, किंतु वो गौर बन ये चैतन्य महाप्रभु जी का रस राज महाभाव बन। किंतु यही नहीं, गोपेंद्र सु को नंद बाबा के लड़की नंद नंदन के अतिरिक्त बिना सिंहों नाक पर से अन्य जन राधा जी किसी का भी तनिक भी स्पर्श नहीं करते, केवल मात्र कृष्ण के ही अंगों का स्पर्श करती है और किसी का नहीं, इसलिए उनका पति इत्यादि जितना भी भाव है वो सब जोग माया के द्वारा की से कोई भी स्पर्श का संभव है।
माया
आज और क्या हुआ? और विचित्र भाव हुई, सार भावे भावित करी आत्मन तबे निज माधुर्य करी आस्था। अब महाप्रभु जी हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण होकर के कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? रागानंद को कह रहे हैं, अंगों से अंग को ढक दिया और उनका जो भाव था वो भाव ही ढक गया किससे? राधा जी के। कृष्ण का ये है जो मैं विषय हूँ प्रेम का, किंतु उनका भाव ढक करके अब क्या हो गया?
मैं प्रेम का
अब हो गया जो मैं राधिका जी हूँ, मैं कृष्ण की सेविका हूँ, और राधा जी को महाभाव तक जितने मातन मोदन दिव्योन्माद प्रेमोन्माद प्रेम वैचित्र इत्यादि जितना भी राधा जी की जो खुद की संपत्ति थी वो सब इनमें संक्रमित हो गया। कृष्ण ने राधा जी ने उसको तब, अब कृष्ण की आत्मा मन शरीर, शरीर तो शरीर से ढक गया, मन उनके मन से और आत्मा उनकी आत्मा की भावनाओं से, महाभाव और ऊपर तक सब कृष्ण के अंदर में आ गया। सब कृष्ण भाव को लेकर के राधा जी बन करके अपने रूप को और स्पर्श, यही है रसराज और महाभाव दोनों का सम्मिलन, यही है चैतन्य महाप्रभु का। कह दिया तो और कहा मैंने और सुना आप लोगों ने, न तो श्रोता को न वक्ता का अंत मात्र भी उपलब्धि नहीं। सुन लो या अभी ज्ञान थोड़ा सा, वो भी खंड जब अनुभूति का विषय होगा ना थोड़ा सा भी, उसमें भी ऐसे भाव नहीं रहेगा। तब तो रामानंद जी का जैसा होता था, रूप स्वरूप काम इत्यादि को होता था ऐसा होगा, তোমার ছাই আমার কিছু গুপ্ত নাই মহাপ্রভু। অব তো অব কি সময় তুমারে নিকট মে আমার লুকানে লিয়ে ছিপানে কে লিয়ে আর কই ভী বাত নেই লুকাই লে প্রেম বলে জানো সব যদি মানে ছিপা ভী দিয়া তো প্রেম কে বল সে আপ সব কু জাননে মে সমর্থ হ্যাঁ অব আমারে পাশ মে কই চোরি করলে কি কোনো চিজ নেই রে গুপ্ত রাখি হ কাহা না কবি করি হ গুপ্ত রাখি গুপ্ত রাখনা কিছু কো মত কহনা আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহার কারণ इस विषय को गुप्त रखा संसार में जितने भी भक्ति के भाव या प्रेम के उच्च से उच्च सोपान हैं उनमें यह भाव सबसे सबसे श्रेष्ठ और गोपनीय है। गीता जैसे ज्ञान के लिए तपस दिया न तपस्काय जो तपस्वी नहीं है इंद्रियों को संयम करने वाले नहीं है और जो गुरु की सेवा नहीं करने वाले हैं ऐसे लोगों से हमारा गीता का यह ज्ञान मत कहना नहीं तो क्या होगा इसका गुरु की होगा नहीं समझ करके कहेंगे कि ये गीता ये कर्म का उपदेश देती कोई कहेंगे ये ज्ञान का उपदेश देती विषदे तदनंतरम उसमें मिल जाता कोई कहेंगे कर्म करो उस गीता का उपदेश करेंगे इसलिए इन लोगों के साथ में ये गीता की बातें मतलब नहीं जब गीता जो प्राथमिक पुस्तक है धर्मराज्य की उसके लिए शपथ दिया है तो महापुरुष जी ने क्यों कहा इसलिए कहा कि जो पिछड़ी जो सहलियां हैं जो अद्वैतवादी हैं जो कर्मी हैं जो ज्ञानी हैं जो सत्कर्मी भी हैं उनके यहां ये समझ प्रकाश करना नहीं तो कहेंगे क्या ये सब पागल हैं उपहास करेंगे अभी भी रागानुगा की साधारण बातें भी दूसरे लोग उससे क्या करते हंसी मजाक उड़ाते साधन भट्टाचार्य भी राय रामानंद के भावों का उपहास करते थे तो और लोगों की तो बात इसलिए इन सब बातों को मत कहो किसी से मैंने वेदांत पढ़ लिया है उपनिषद भी पार कर लिया है इसलिए मैं चैतन्य के सामने इन सब चीजों को क्यों नहीं समझूंगा नहीं समझेगा आप प्रस्ताव नहीं समझेगा जब साथ हम भट्टाचार्य जैसे विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती जैसे लोग नहीं समझ पाते तो साधारण आदमी क्या रसिकों के साथ में रह करके 10-20 लाख जन्म उनकी सेवा करेंगे सब कुछ कुछ समझ सकते हैं है? अभी वो सब बातें हम खुल करके समाज में कहें ना तो हमारे ये राम प्रकाश जी हैं वकील साहब हैं हमको मथुरा में नहीं रहने देंगे हमको सबसे पहले बात करेंगे ये लड़कियों को लड़कों को ये सब को चपट कर रहे हैं ये सब काम की और प्रेम की बातें करता है मैं कहूंगा ये भाई सभी गोपी बन करके कृष्ण की सेवा रहने देंगे यदि कहूं सब लोग भगवान का भजन करो संसार को छोड़ो संसार में आसक्त मत हो घट जाएंगे ये हमारे लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं इसलिए ये प्रेम की ये सब जो अत्यंत पराकाष्ठा की बातें हैं मत कहना नहीं तो हमको एक पागल मैं हूं एक अन्य एक बाकी पागल और तुम्हें द्वितीय बाकी तुम एक दूसरे पगल पागल दोनों का मेला लग गया तो यहां पर कहते हैं कि ऐसी बातें वो गीता में भी बता है न भेद बुद्धि जनये प्रकर्मसं विना कर्मी जो लोग हैं सब कर्मी जो हैं इनकी बुद्धि को मत भेद करो भक्ति के द्वारा उनसे ये श्लोक मत कहो क्या श्लोक पिता न सत्यात् स्वजनो न सत्यात् जननी न सत्यात् दैवं न सत्यात् पति न सत्यात् मोहे जनते आप कौन थे? मैं तो एक साल से पहले ही हुआ। उनको कहो करके देखो, माता पिता की सेवा करना और पिता ही स्वर्गो पिता ही धर्म, पिता को ही भगवान का रूप मान लो और उनकी सेवा करो। और जब कभी हो दिन भर में एक बार कृष्ण को प्रणाम कर लो, हरे कृष्ण एक दो बार या पांच बार कर लेना, बस यही बहुत है, अधिक मत कहो। न भेद बुद्धि तो इसलिए ये कह रहे हैं जो कर्मी है सब कर्मी है, ज्ञानी है तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी तकनीक इनको मत कहो ये लोग अधिकारी नहीं है। कौन अधिकारी इसके लिए है? क्या उन्होंने ये कह दिया है कि गुप्त राशि हो ना कोई हो प्रकाश प्रकाशमत कर ये कह दिया? तो मैंने रूप गोस्वामी को इसी व्यक्ति ने क्यों यह सब बतलाया? और एक ये थे प्रद्युम्न या नृसिंह, नृसिंह आनंद ब्रह्मचारी महाप्रभु जी से वो सुनने के लिए थे। उन्होंने कहा कि भैया हमने जो कुछ सुना है राय रमन उनके पास में जाओ। प्रद्युम्न प्रद्युम्न उन्होंने सिंह तो उनको भेज दिया। मैंने उन्होंने पहले देखा गए तो घर में वो नहीं, मुझे तो कहाँ गए हैं तो उनके अंतरंग जो उन लोगों ने कहा जैसे वो घर के भीतर हैं। क्या कर रहे हैं? तो 12-13 वर्ष की लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी सिंगरी देवदासियां उनको अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान करा करके श्रृंगार करके, और कैसे नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है, और कैसे भाव से किसन किया जाता है वो किसल का क्या कमला कुछ मंडल भीत मंडल फलित ललित जय जय ये सब सिखला रहे हैं। वही सब जयदेव के गीत गोविंद के पद कैसे कैसे सब पद उसको सिखला क्या भी है ना? क्या लड़कियों को नंगी स्नान करा करके उनको श्रृंगार कर सकता बस बेकार की एक होगा वो लौट करके चले। महाप्रभु जी को प्रणाम करके जाने लगे। महाप्रभु ने गया था सुना तो कुछ बोले नहीं, सुना कि नहीं बतलाओ? तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? तो वो काम नहीं करते कथा हट जाता तो अपने भीतर की बात में महाप्रभु अंतर जानी है समझ लीजिए जाओ से जाओ बताए ठीक से जाओ और उनसे कहना कि हमने दिया है और उन्हें कोई भी कुछ देखना मत, मैंने उनसे हरी कथा की। और जब गए कैसे आए अथवा आया कुछ हरी कथा की किसने भेजा? चैतन्य महाप्रभु। क्या सुनना चाहते हैं? तो आपने जो महाप्रभु जी को सुनाया उसको ये सब बातें जो अभी तक जो राय रामानंद का संवाद हुआ था उनको बतलाया। तो यदि सभी से दूसर अपने की बातें थे इनको क्या समझाया? देखा जाए महाप्रभु के कृपा पात्र हैं इसलिए महाप्रभु जी ने रूप के अंदर में यही सब भावों की स्फूर्ति की और इनसे कहा था कि आप सब बातें इनको कहें। तुम तो नहीं समझे सुनाएंगे? अधिकारी व्यक्ति को सुनाने में दोष नहीं, इसी को कहते हैं दूसर अधिकारी बात। और यदि अधिकारी व्यक्ति को नहीं सुनाया जाएगा तो जगत से ये विद्याएं भी और ये भक्ति भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए यह कहा था हमारे गांव तुमसे सर्वे कहा तुम एक पागल हम न पागल इसलिए गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए अतएव अमार तुम्हारे अमाय यही समतुल हम दोनों में ही ये पागलपन की बात जगत के बीच लिए ये पागलपन है। जस्ट साधारण मनुष्य के लिए जो रात
शुभानंद
जगत तो जिसके लिए रात है वही ज्ञानियों के लिए दिन है, ज्ञानियों के लिए जो दिन है उनके लिए वो सुनते रहते हैं। तो इस जगत के लोग इसमें सुनेंगे उसे पागल बतलाएंगे और भक्त लोग इसी को परंपरा का साक्षात समझेंगे। इस तरह से दोनों में वार्तालाप होने के बाद में फिर कल जो होगी अब
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गौरतमानन्दे हरि हरि बोल
नमो महाकल्याय कृष्णते मातुराजते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तुते आत्मा रूप दिखलाया राधा जी के सफेद अंगों से कृष्ण के अंगों और उनकी गौर कांति से कृष्ण की नील कांति राधा जी के अच्छी अंगों का स्पर्श कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरा नहीं कर सकता। गौरव रहे वो राधा में स्पर्श गोपेन्द्र सुख बिना जीवना स्पर्श क्यों नहीं स्पर्श कर सकते। राधा में कृष्ण राम विष्णु कल्कि जितने भी अवतार हैं सब तो वही सबको वैभव द्वारका दूत इत्यादि सभी उसमें उनके अंगों का स्पर्श क्यों नहीं कर सकते। कारण क्या उनमें जब तक महाभाव न हो राधा के तीन अंगों में महाभाव और ऐसा ही भाव उनमें रसराज महाभाव न होने उसका स्पर्शन भी है। वो कृष्ण चंद्र ने ही वीर ललित नायक वीर ललित नायकत्व किसी भी इसकी विग्रह में नहीं है कृष्ण विग्रह के अतिरिक्त। इसलिए राधिका जी को स्पर्श करने के लिए वीर ललितत्व नायक न कुछ जरूरी इसलिए न कुरान हो सकते हैं न जाता भी हो सकते हैं न कोई भी अवतार। इसलिए उस महाभाव को छूने के लिए यह भाव जरूरी इसलिए किसी में नहीं है इसलिए वो लोग नहीं छू सकते। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
रामचंद्र
जी ने भी क्या गौरंग नहे गौरंग ने मोर राधा अंग स्पर्श रूपेंद्र सुख बिना तीनों ना है स्पर्श अंग उसी के लिए टीका में कह रहे हैं व्याख्यान प्राकृत जो सह दिया होते वो लोग इस प्यार का अर्थ ये लेते हैं गौर और कृष्ण ये अलग अलग हैं और गौर ही गौर रूप में ही वो नायक हैं और प्रतिया भाव से उनकी सेवा की जा सकती है ऐसा वो मानते हैं। इसलिए गौर को नागर और अपने को नागरी मान करके उनकी कामना करते हैं। वस्तुतः वास्तव में उभय उभय माने गौर चंद्र और कृष्ण चंद्र दो है ही इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गौर नहीं मैं कृष्ण हूं और राधा जी के स्पर्श से ही मैं कृष्ण ऐसा गौर दिखता हूं। इन्हें दो तो ही है एक ही तत्व है इसलिए एक ही तत्व माना जाएगा। उभरी स्वयं विग्रह रूप विग्रह गौर ही गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में संभोग रहते नागर या दिशा दिख रहे गौ चंद्र कृष्ण रूप में।
अरे इसे जाना चाहते
गौचंद्र कृष्ण स्वरूप में वो नागर है गजीर लड़ी सुना है और दिशा दिख रहे और कृष्ण ही और गौ स्वरूप में विप्रलम्ब रस में आश्चर्य दिख रहा आश्चर्य विग्रह को विषय विग्रह बनाना है उचित नहीं। कृष्ण है विषय विग्रह प्रेम से भोक्ता है और वही गौ विग्रह में वो विप्रलम्ब रस में आश्चर्य विग्रह राधा जी हो करके और कृष्ण को आस्वादन कर रहे हैं इसलिए वो विषय विग्रह नहीं हो भोक्ता नहीं है। है भोक्ता किंतु वो भोग्य के रूप में कृष्ण है राधा जी के रूप में है इसलिए करें कृष्ण ही गौ स्वरूप में विप्रलम्ब रस में आश्चर्य विग्रह राधिका जी की भावकांति में श्री कृष्ण करें। अप्राकृत श्रृंगार और स्वराज विग्रह अप्राकृत श्रृंगार रसराज विग्रह धीर ललित नायक स्वयं नंदन दल के बिना दूसरा कोई विष्णु विग्रह कृष्ण पूर्ण चित शक्ति व स्वरूप शक्ति महाभाव स्वरूप राधिका के भोक्ता नहीं हो सकता राधिका जी से उनका संपर्क नहीं हो सकता केवल मात्र किससे होगा श्रृंगार रसमय विग्रह धीर ललित नायक ये कृष्ण ही राधा जी को स्पर्श कर सकते क्योंकि उनकी ये पराशक्ति है ये महाभाव स्वरूप है इसलिए कृष्ण व्यतीत समस्त विष्णु विग्रह श्रृंगार रस और धीर ललित नायकत्व भाव का अभाव है नहीं। और वे लोग उन लोगों में ऐश्वर्य प्रधान है द्वारकाधीश शक्ति जितने उसमें ऐश्वर्य प्रधान है इसलिए श्रीमती जी का नाम है चैतन्य से चामित्र ने बतलाया गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्था सर्वकांता श्लोक गोविंद को आनंद देने वाली राधा गोविंद मोहिनी गोविंद को मोहन करने वाली गोविंद सर्वस्था सर्वकांता श्लोक इसलिए तार धारे धारित करी आत्मन सवे निज माधुर्य करी आस्था राधा जी के भावों से अपने आत्मा और मन को निर्धारित करके अपना ही कृष्ण माधुर्य आस्वादन कर तुम्हारी अमार की गुप्त नहीं कर मोहताई लकड़ी बोले जानो सब यदि मैं इसे छिपा भी दूं तो आप अपने प्रेम के बल से हमारी उन सब चीजों को ये बाबा के कहा कि गुप्त रखना दूसरों को मत करना अनाधिकारी लोग जो है कर्मी ज्ञानी जो भी सफलती सहजिया सफी भेदी ज्ञानी मुक्तिवादी ये सब इसके लिए जुड़ते हैं इसलिए इस विषय को छिपा कर रखना नहीं तो वो लोग फंसी उड़ाएंगे और पागल समझेंगे हम इसलिए उनकी दृष्टि में मैं भी पागल हूं महाप्रभु जी कह रहे हैं अब तुम भी पागल हो क्यों ये सब चीज उनके लिए अधिकार से बाहर की है इसलिए यदि ये कोई प्रसंग भी सुने वो लोग तो इसको पागलपन की बात करें इसलिए इन लोगों से कभी भी ये सबका प्रसंग न से दस रात्रि रायरमानंद संगे सूखे गवाई जा प्रभु कृष्ण कथा इस प्रकार से दस रात तक महाप्रभु उनसे लगातार इस विषय में वार्तालाप करते रहे निगुण ब्रजे रस लीला विचार अनेक कहे तार ना पाई होता ब्रजे की जो रस लीलाओं का विचार है इसके संबंध में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए ये अपार है और बहुत मृत्यु। दशरथ में ये सब समाप्त हो जाएगा, गाना सुनना नहीं, वो तो प्रारंभ है। ये कैसे हैं इनको बतलाया, तांबा काका रूपा सुना रत्न चिंता में केहो जदि कहाँ पौता पाए एक खानी परमे उठाई से केहो उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नों पर परिवर्त प्रभु जानता। तांबा, तांबा होता है कांसा, और रूपा गमने चाहिए सोना, और रत्न चिंतामणि रत्न, ये पांच का नाम है। ये उपमा दे रहे हैं जिस प्रकार के चित्र के अंदर में धातु के रूप में तमा मिलता है, पहले से चलता है कोयला से, कोयला कोयला के बाद में फिर किरासन से, उसी के नीचे पेट्रोल, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तांबा, कांसा, रूपा, सोना, हीरा, हीरा के बाद में फिर बड़े बड़े को कहते हैं मणि, जैसे वो पहले निकला था पन्नूर हीरा, बड़े बड़े रत्न, और उसके बाद में चिंतामणि। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मट्टी को खोदा तो खाने मिलती है, तरह तरह की खान, तो यदि उसको कोई कोयला भी मिलता है तो आजकल बहुत किसी को। ऐसे ही एक केहो यदि कहाँ कोता पाए एक खानी, यदि एक को मिलता है दूसरा फिर मिल जाता है तो एक को छोड़ देता है, फिर दूसरे श्रेष्ठ वस्तु को ले लेता है। उसी प्रकार से कमे उठाई से जो उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नों का प्रयोग होगा। इसलिए उन्होंने बड़ाश्रम धर्म में भगवान की आराधना से उठाया, कहाँ से उठाया, वर्णा सबसे पहले बतलाया साध्य साधन किसको, बड़ाश्रम धर्म के द्वारा हरि को प्रसन्न करना ही समस्त धर्मों का मिल गई साध, भगवान की प्रसन्नता हो गया साध्य और साधन हुआ वर्णाश्रम धर्म का। महाप्रभु जी ने कहा यह बात जी आगे कहा, तो उन्होंने कहा कृष्ण कर्माश्रम वर्णाश्रम धर्म का पालन करके विष्णु को प्रसन्न करना ये कोयला इत्यादि के लिए, उससे कृष्ण ने अपने कर्मों का अर्पण कर दिया हुआ। महाप्रभु जी ने कहा यह पाठ्य तुम कौन कर्म पर अर्पण करने वाला है, कर्म तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं, अतए इस चीज को छोड़ आगे बढ़। उन्होंने कहा तो धर्म त्याग, शरीर का मन का जितना धर्म है त्याग करो, यही सबसे साधन। स्वधर्म त्याग मैंने सर्वधर्मान सबसे जमान एक भगवान से कर्म। महाप्रभु जी ने कहा हो बाजी, यो बाजी, यही बाजी, क्यों अभी तक उनका तो धर्म था शरीर का धर्म ही हमारा धर्म, माता पिता का पालन, संसार का ये पालन, ये सब जैसी धैर्य करना इनका त्याग करने से कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि ज्ञान मिथ्या भक्ति सभ्यता ज्ञान, महाप्रभु जी ने कहा कि वो बात किया ज्ञान मिथ्या मैंने क्या, मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म तत्व हूं, शोक नहीं करता और सब समय प्रसन्न रहता, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में सोचने का मत समस्त भगवत
कहीं शोक नहीं करता, सब जगह संभावापन्न है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इनमें सब सुख नहीं, सब समय प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में पड़ा सकते इलाज करता है। ज्ञान मात्र ज्ञान ही हो बात में, ज्ञान विचार से भक्ति से लोग अंत में उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति। महाप्रभु जी ने कहा यह है ज्ञानी प्रयास मुझे पास। उन्होंने कहा कि आगे बढ़िए है ही हो आगे बढ़ो। ये जो पांच हुआ ज्ञान शून्य भक्ति तक, ये पांच बतलाया पहले क्या कोला उनका सोना तांबा, और फिर इसका दूसरा स्तर और पांच, उसको भी पांच बतलाए। उस पांच स्तर को बतलाएंगे यहां से आरंभ करेंगे। एक तो उसको बतलाएगा शांत दास्य स्वच्छ फसल और मधु, उसको भी छोड़ दीजिए और उसके नीचे भी चले विचार। तो प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के दो स्तर बतलाए, वैधि भक्ति का प्रेम और भाव भक्ति वाला प्रेम, नानोपचार वाला वैधि भक्ति और कृष्ण भक्ति रस भाविता, ये बतलाया राधांगा भक्ति का। मां प्रभु जी ने कहा कि हाँ ये ठीक है आगे करें, तो आगे बढ़े। तो फिर उन्होंने बतलाया शांत को रहने दिया, शांत को नहीं बतलाया, शांत को क्यों नहीं बतलाया, उनका राधांगा भक्ति का लक्ष्य था ब्रज में कृष्णचंद्र जी की राधा जी की सेवा। इसलिए ब्रज में शांत क्या चीज है, जमुना सली प्रभुपाद जी ये व्याख्या में बतला, जमुना सली कुलीन बालुका कदम्ब वृक्षादि लताएं सब वृक्ष और लताएं, गोवेत्र बेचानी तेनु, ये सब शांत रस के विग्रह हैं। और जगह हो सकते हैं किंतु ब्रज में शांत रस का प्रकाश नहीं, जब संभव तो इन्हीं लोगों को ब्रज में का सकते हैं शांत रस के विग्रह हैं। किंतु कहते हैं भक्ति स्वामी सिंधु में ब्रज में शांत रस का प्रभाव नहीं, प्रकाश नहीं, जब कहो एकदम है ही नहीं है तो वहां प्रभाव हो जाएगा। इसलिए हैं किंतु उनकी क्रिया खूब कम देखती है। इसलिए ब्रज में जमुना सली जमुना का पानी इसको शांत माना जाता है, किंतु है क्या जमुना सली माने जमुना जी, वो तो विशाखा है, इसलिए तो कहा नहीं जा सकता। पुलिन बालू का वहां पर बालू है ना, जमुना का पुलिन इसलिए कहा गया राधा कृष्ण गोपियों के सहित उसमें प्रवेश करके जल उलीचते हैं, जल उनका अंगों पर स्पर्श करता है। यदि कोई वहां पर व्यक्ति होता ना तो ये सब लीला नहीं होता, लज्जा आती, क्योंकि पानी से क्या लज्जा, वृक्ष से क्या लग जाए, कमल के फूलों से क्या लग जाए, उसको जड़ अचेतन मान करके उनके सामने लीला में कोई संकोच नहीं होता है। तो फिर मैं जी वस्तु है, कमल भी है पानी भी है नदी भी है उसका तट भी है, ये सब फिर मैं वहां के वृक्ष भी हैं सब फिर मैं जान रहे हैं, अनुभूति है, रस भी आस्वादन कर रहे हैं, किंतु इनसे तीन संकोच लग जाए उसके लिए अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूल होने के नाते उसकी सेवा करते हैं किंतु वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए इनको शांत करते हैं। किंतु है नहीं वो जमुना जी स्वयं विशाखा है, कदम्ब वृक्ष इत्यादि गोपियां से कह रहे हैं कदम्ब वृक्ष, कदम्ब को कृष्ण को देखते ही आनंद से भर जाते हैं और अपने किस फल को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो फलाई उसको हम शांत कैसे कर सकते, कृष्ण के ऊपर में छाया करने लगते हैं। गायों के बछड़े कृष्ण बन गए, तो ये माता वात्सल्य रस से है। साधारण गायों को शांत रस कहेंगे, क्यों? गाय अपने आप जाकर के कृष्ण को गोदी में नहीं बैठा सकती और अपना दूध नहीं पाल पिला सकती, पालन पोषण नहीं करती, किंतु कृष्ण उनके बछड़े जब बन जाते हैं तब इसलिए इनको भी शांत नहीं कहेंगे। और वेत्र है, वेत्र ये वेत्र जो हाथ में लिया लकिया के रूप में गायों को इधर उधर कर रहे हैं, कृष्ण का बड़ा ये वेत्र क्या है? हैं तो बलदेव, वेणु क्या है? बलदेव जी है। इसलिए सखा के रूप में सब समय कृष्ण अपनी पेटी में यहाँ वहाँ कर रखते हैं, वेत्र भी कान वेणी।